नमस्कार दोस्तों, मैं वीनस एक नए नाम के साथ हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। अब मैंने नए पेन नेम वीनस से इस नई साइट पर लिखना शुरू किया है। मुझे आशा है कि आप लोग मुझे वैसे ही प्यार देंगे। ये कहानी दफ्तर में आई नई लड़की को पकाकर पुराना किए जाने की है। वैसे कैसे एक मैनेजर उसके नीचे काम करने वाली सभी लड़कियों को केवल भोग की वस्तु समझता है, लड़कियों का इस्तेमाल करता है केवल अपने काम क्रीड़ा के लिए। बात कुछ बरस पहले की है। मेरी नई नौकरी लगे 6 महीने हो गए थे। मैं ज्यादा घुलते मिलते नहीं थी। किसी को भी मेरी चुदास जिंदगी और चुदक्कड़ दिमाग के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में मैं अपनी भावनाएं, आशाएं, अपने कामों, ख्यालों को अपने भीतर रखती थी। दफ्तर में एक भोली भाली सहमी लड़की के रूप में जानी जाती थी, जबकि वास्तव में मैं एक सेक्स एडिक्ट गर्ल हूँ। मेरे से ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले मेरे कलीग्स मुझसे हंसी मजाक करते, डबल मीनिंग बातें करते, पर मैं सिर्फ अपने काम में बिजी रहती। मेरे कलीग्स में सभी मुझसे बड़े और 30 मार खाते। दफ्तर में तो ठहाके गूंजते। दोपहर होते होते सब शांत हो जाता और शाम तक दारू। मैं सुबह 8 बजे आई, शाम को 7 बजे निकलती थी। मेरे दफ्तर की कुछ लड़कियां हमारे मैनेजर और कलीग्स के साथ दारू पीने जाती थीं। उन शामों में क्या होता था किसी को कुछ नहीं पता, और ना ही मैंने कभी जानने की हिम्मत की। हमारे दफ्तर में हर 6 महीने में टीम शहर से बाहर घूमने जाती थी, जिसे लर्निंग इवेंट कहते थे। ये इवेंट कभी एक रात के लिए, कभी 2 या 3 रातों के लिए होता था। होली आने को थी और अर्धवार्षिक लर्निंग इवेंट भी। एक ईमेल सबको आई कि इस बार का इवेंट होली पर होगा और हम सभी उत्तराखंड में कॉर्बेट के एक रिसॉर्ट में जाएंगे। हम वहां 2 रातों के लिए रुकेंगे। पहले दिन शाम को खेल कूद के कार्यक्रम होंगे और इस साल अब तक का काम कैसा रहा, क्या टारगेट्स हैं वो बताए जाएंगे। टीम में अच्छा काम करने वालों का अवार्ड दिए जाएंगे। शाम में नाच गाना, डिनर पार्टीज होंगी जिनमें कुछ डांस परफॉर्मेंस और संगीत की परफॉर्मेंस होंगी। दूसरे दिन सुबह होली का कार्यक्रम होगा जिसमें भांग पकौड़े नाश्ते का इंतजाम होगा। दोपहर के खाने के बाद शाम में कॉकटेल पार्टी होगी और टीम बिल्डिंग गेम्स होंगी। और तीसरे दिन सुबह बस से दिल्ली के लिए। होली के दिन लड़कियों को साड़ी और लड़कों को कुर्ता पजामा पहनना था। पढ़ने में तो सब अच्छा लग रहा था, पर एक ही बात का डर था। शाम ढलते ही मेरे अंदर जो रंडी की आत्मा आती है ना, कहीं वो सब माहौल खराब न करते। मेरी दबी इच्छाएं जो ढलती शाम के साथ और प्रबल हो जाती हैं। दारू पीने के बाद नहीं देखती कि कौन मर्द है, बस शर्म के सारे पर्दे गिराती चली जाती है। खैर, इस बात की संतुष्टि थी कि मेरे साथ मेरी एक और महिला सहकर्मी कमरा बांटेगी, शायद मैं खुद पर काबू कर पाऊं। पार्टी में पहनने के लिए मैंने ब्लैक मिनी स्कर्ट और एक खूबसूरत लाल क्रॉप टॉप पैक किया। अब सोच में पड़ी थी कि साड़ी कहाँ से लाऊं। माँ की साड़ी पहन भी लूँ तो ब्लाउज और पेटीकोट का क्या करूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे अंडरवेयर को टॉप ब्लाउज की तरह पहनते हैं, यहाँ तक कि पुरानी लेगिंग को काटकर पूरी बाजू का ब्लाउज बना सकते हैं। बस फिर क्या था, पुरानी सफ़ेद लेगिंग निकाली और काटकर ब्लाउज बना लिया। क्योंकि मैंने पहली बार कर रही थी तो गलती से गला कुछ ज़्यादा गहरा कट गया। फिर सोचा साड़ी से ढक लूँगी यार, अब पेटीकोट का जुगाड़ करना था। ऑनलाइन देखा था कि कैसे बिना पेटीकोट के एक नाड़े के साथ भी साड़ी बांध सकते हैं, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की। 2-3 बार कोशिश के बाद मैंने बिना पेटीकोट की साड़ी पहनने में कामयाब हो गई। अपने ज़रूरी सामान रखकर बाकी का बैग तैयार किया। हमें दफ्तर से बस मिलने वाली थी। सुबह 8 बजे गुड़गांव से जाकर दिल्ली और यूपी से होते हुए कॉर्बेट पार्क पहुँचना था। मैं सही वक्त पर ऑफिस पहुँच गई और बस में बैठ गई। जाने वाले सभी लोगों की सूची पहले से तैयार थी। सबकी हाजिरी के बाद करीबन सुबह के 8:30 बजे बस निकल पड़ी। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, एक कोने पर स्पीकर पर गाने बज रहे थे, कुछ लोग गाने गा रहे थे। कुछ घंटे ये सब चला, फिर धीरे धीरे सब बोर होकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। सफर लंबा था, हमें मार्गदर्शक मानचित्र 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में नाश्ता, भजन, रुकना था, 2-3 घंटे और जोड़कर 7-8 घंटे का सफर था। मैंने अपने कानों में सेक्स ऑडियो लगाया और आंखें बंद करके मजे लेने लगी। हालांकि वहां उस वक्त बस में उंगली करना संभव नहीं था, पर मैं ख्यालों में गर्म हो रही थी। जैसा कि मैंने पिछली कहानियों में भी बताया है, मुझे सिर्फ सोचने भर से कामुकता चढ़ जाती है, किसी के छूने चूमने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मैं उठी तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था और हेडफोन भी गायब था। बहुत ढूंढा मिला नहीं, सबसे पूछा पर किसी ने नहीं देखा। उदास होकर बैठ गई तो पीछे की सीट पर बैठे मैनेजर आए और बोले, ये फोन तुम्हारा है? मैंने कहा हाँ। अब डर था कि कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया कि फोन में क्या चल रहा था। मेरा फोन लॉक रहता है तो खोल तो कतई नहीं पाए होंगे, पर ऑडियो अगर खत्म हो गया हो तो पता नहीं। मैनेजर का नाम दीपक था, वो मुझसे 20 साल बड़े होंगे, मैं 25 साल की थी, पर मेरे पहले और दूसरे आशिक को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। मेरे मैनेजर धीरज वैसे तो बहुत अच्छे, पर रह कर घुमा फिरा के पूछते हैं कि शादी कब करने वाली हूँ। अब उन्हें कौन समझाएगी रान की शादी के दल्ले नहीं होते। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म ना हो इसलिए मैंने एयरप्लेन मोड पर किया और बैग में रख दिया। अब मैं लोगों की बातें सुनने लगी। फिर अंताक्षरी शुरू हुई। पीछे की सीटों पर बैठे मैनेजर और अधीक्षक स्कोर रखने वाले थे और धीरे धीरे समा बनने लगा और गानों में मजा आने लगा। मेरी टीम आगे चल रही थी और हमारे पास अक्षर आया ज। तभी मुझे गाना याद आया, जरा जरा टच में जरा जरा किस में। मैं गा रही थी और दीपक मुझे बहुत गौर से देख रहे थे और फुसफुसा कर धीरज से बातें कर रहे थे। हमारी टीम जीत गई। इतने में बस धामपुर के बाहरी इलाके में ढाबे पर रुकी। 1 बजने को था, दोपहर का लंच था। सब उतरे, मैं भी उतर गई। पराठे, कचौरी, सब्जी, ब्रेड पकौड़े, रोटी, दाल, चावल, चाय, कॉफ़ी, सब। तो मैंने थोड़ा बहुत खाया और वापस बस में आ गई। सुबह के सेक्स ऑडियो से उंगली चुदास भी तो शांत करनी थी। मन तो किया बस के ड्राइवर की लौड़ी पे बैठ जाऊं, पर इतना वक्त नहीं था कि पहले लौड़ा खड़ा करो फिर चुदो, इसलिए मैं अपनी सीट पे आ गई, खिड़की की तरफ बैग अटकाया, किसी और का बैग अपने बाएं रखा और अपनी तंग पजामी में उंगली करने लगी। जाने क्यों आंखें बंद करते ही दीपक दिख रहा था। वैसे भी मुझे अपनी से दुगनी उम्र के मर्द बेहद पसंद है। मैं उसके बारे में सोच अपनी चोट सहलाने लगी। हल्के हल्के फिरते हुए उंगली कब तेजी से अंदर बाहर होने लगी पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि दीपक मेरी गीली चूत चाट रहा है। उन दिनों मेरी चूत चटाई की अधूरी कामना रह रहकर कामुक माहौल में उभर के बाहर आती थी। दीपक का चेहरा अपनी चूत में घुसा सोच में जोर जोर से उंगली करके झड़ गई। बैग में रखे फेस टिश्यू से अपना हाथ साफ किया, दोनों बैग वापस जगह पर रखे। ये सब 5-10 मिनट में हो गया। अब मुझे मूतना था, पर मैं ना पब्लिक टॉयलेट नहीं जाती, तो कंट्रोल किया। उंगली से मेरी जूत की मादक सुगंध आ रही थी, जिसे बार बार सुनकर मैं उत्तेजित हो रही थी। कुछ देर बाद सभी आ गए। दीपक बोले, हम आपको ढाबे पे ढूंढ रहे थे गिनती के लिए, आपका फोन भी नहीं लग रहा है, आप कहाँ थी? मैंने कहा, मैं टॉयलेट चली गई थी, फोन बस में था, सॉरी। और टांगों को भीच अपने होठों से चूत रही थी। उन्होंने कहा, चलो जाने दो, कम से कम फोन तो ऑन रखो, अपने पास रखो, कोई रह गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उदास से चेहरा बना के वापस अपनी सीट पे बैठ गई। गिनती हुई और सब लोग पूरे थे। खाना खाकर आलस आ गया और देखते ही देखते सब अपनी सीट पर सो गए। अब आगे की कहानी दोबारा लेकर आऊंगी।